या
द लॉस ऑफ 80 बिलियन का हो रहा था, बट पंपिंग जो
स्टिमुलस
कर रही थी वो 300 बिलियन कर रही थी, यानी कि
ऑलमोस्ट थ्री टू फोर टाइम्स
मोर देन योर लॉसेस थे, ठीक है ना। अब आप देखें ना, मेरी एक छोटी सी कंपनी है और उसमें मुझे लाख डॉलर का लॉस हो रहा है और आप आके मुझे $4 लाख हर महीने देना शुरू कर दे, राइट। तो ऑब्वियसली मेरे बिजनेस को तो कहीं ना, क्योंकि देन आई विल बी एबल टू रिकवर, आई विल बी एबल टू सस्टेन एंड आई विल बी एबल टू इवेंचुअली कम बैक एंड देन डू मच बेटर, राइट। तो गवर्नमेंट ने इतना पैसा इकोनॉमी में डाला है
कोई शक
नहीं, इट इज अनप्रेसिडेंटेड, राइट। और उसकी वजह से दैट इज व्हाट इज बूमिंग राइट नाउ। हम देखें ना इस वक्त रियल एस्टेट, मुझसे आप पूछें तो मैं रियल एस्टेट की फिक्र है तो मैं आपको बताता हूं मुझे रियल एस्टेट की फिक्र है। मुझे फिक्र यह है कि आज जब हम लॉकडाउन में हैं, अभी हमारी वैक्सीनेशन भी पूरी नहीं हुई, अभी हमारा जो इमिग्रेशन प्रोसेस नहीं हो रही, जो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर होता है, हमारे फॉरेन स्टूडेंट नहीं आ रहे जो बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट और रेंटल्स एंड स्टफ लाइक दैट, राइट। टूरिज्म नहीं आ रहा, उसके बावजूद ये हाल है। तो जब ये चीजें रिजॉल्व होगी इंशाल्लाह, मेरे ख्याल मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगले यू नो बाई कैनेडा के एटलीस्ट हर एक को हमें हु वांट्स इट पहली जो है शॉर्ट ऑफ वैक्सीनेशन तो मिल जाएगी एंड होपफुली फॉर इट लेटर पार्ट ऑफ समर आपको दूसरी शॉर्ट भी मिल जाएगी, राइट। तो जब ये इकोनॉमी खुलनी शुरू होगी तो उस वक्त क्या होगा, मतलब
अदान मैं थोड़ा सा रीकैप करूं। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि इस वक्त जबकि स्टूडेंट्स की आमद भी रुकी हुई है, इमिग्रेंट्स भी नहीं आ रहे, और इस वक्त अगर मार्केट सोर कर रही है तो आप इमेजिन कीजिएगा कि जब अब जितने लोग पाकिस्तान या दुनिया के किसी खत्ते से भी आ रहे हैं तो पैसा लेके आ रहे हैं, तो यही मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंचेगी। अनदर थिंग जो आई वुड लाइक टू ऐड इज अदनान, अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें, जॉब्स की स्टेटिस्टिक्स देखें, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की स्टेटिस्टिक्स देखें, तो माजी भाई यहां पे मैं आई नीड योर इनपुट के एम्प्लॉयमेंट के लिहाज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो हमारा रिकॉर्ड लो है।
अभी नहीं, अभी हो गया है, अब वी रीच्ड ऑलमोस्ट 13%, नाउ वी हैव गॉन बैक टू
8.9% के ऊपर, बट यू नो व्हाट, इट्स अ कोपर, बट स्टिल गवर्नमेंट ने इंजेक्ट भी तो बहुत किया है ना।
यस एंड उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना अरफा जी, वो लॉकडाउन का है कि यहां पर अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा जो लॉकडाउन का किसी स्टेट या किसी प्रोविंस में हुआ है
तो वो
ऑन्टेरियो, तो एंड ऑन्टेरियो इज द बिगेस्ट वो यहां पर जो है प्रोविंस इन कैनेडा। तो लॉकडाउन वगैरह थोड़ा जैसे अदनान बता रहे हैं कि ये जब खत्म होना शुरू हो जाएगा अब विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, 3 मंथ्स, देन यू विल सी द इकोनॉमी मेकिंग अ वी, नॉट अ यू बट वी।
बेटा मैं तो तुमको पहले दिन से कह रही थी ये वी बनेगा। अदनान डाउनटाउन के बारे में, एंड आई पर्सनली एग्री डाउनटाउन इज अ हब। ये देखिए इतने हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड आई बिलीव डाउनटाउन कभी भी बुरी सिचुएशन में नहीं जाएगा। यस दिस वन ईयर वॉज डिफिकल्ट एंड प्रोबेबली नेक्स्ट 6 मंथ्स विल बी डिफिकल्ट, बट डू यू थिंक डाउनटाउन विल कम बैक?
तो आशा जी, एक तो देखें तो आपके जवाब में 101%, ठीक है, और उसकी रीजन रैशनल इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। लोग कई दफा लोग अपनी डिस्कशन में मेरे साथ ये कहते हैं जी बहुत सारे पीपल विल बी वर्किंग फ्रॉम होम, तो डाउन टाउन में उसकी वजह से कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा और पीपल आर मूविंग टू अदर प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल मूविंग टू आउटसाइड सिटीज इज नॉट ओनली COVID-19। मेरा ख्याल आप और मैं ये ट्रेंड पिछले 5-10 साल से देख रहे हैं कि लोगों ने जो है हैमिल्टन और जो है नियाग्रा फॉल और ब्रैनफोर्ड और ओशावा एंड बेरी, ये ट्रेंड ऑलरेडी वहां पर था। ना COVID-19 से टेम्परेरी तौर पर ये ट्रेंड थोड़ा सा बढ़ गया है, राइट, बट वो जितना ट्रेंड है वो एक टेम्परेरी है। उसकी वजह से डाउनटाउन में इस वक्त सारे ऑफिस बंद हैं सारे, बट इट्स नॉट ओनली ऑफिस, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन में After COVID-19, because you know, like I have staff at the office, right? And most of our staff has refused. जब हम उनको ऑप्शन ही देते हैं वर्क फ्रॉम होम की, दे वुड रादर कम टू द ऑफिस बिकॉज दे फील दैट प्रोडक्टिविटी सिटिंग एट होम इज लॉट मोर डिफिकल्ट टू अचीव, ठीक है। तो मेरी पीपल लाइक दिस ब्रेक फ्रॉम देयर फैमिली लाइफ, दे वॉन्ट टू मीट देयर कॉलीग्स, देयर फ्रेंड्स, यू नो ऑल द स्टफ दे बिल्ड अप, सो इज मल्टीपल इश्यूज इन्वॉल्व, राइट। तो मेरी ओपिनियन में तो ये डाउन टाउन वगैरह के भी ऑफिस हो सकता है मैक्सिमम 10-15% एडिशनल लोग शायद परमानेंट तौर पर घर से काम शुरू कर दें, दैट आई थिंक विल बी द मैक्सिमम रेशियो इन माय ओपिनियन. मगर वो जो रेशियो है दैट विल वेरी गुड, बट रेस्ट ऑफ द पीपल हु लिव डाउन टाउन, अब जैसे मैं डाउन टाउन में रहता हूँ, मैं तो डाउन टाउन में काम नहीं करता, हमारा मेन हेड ऑफिस इज इन मिसिसागा. आई लिव देयर बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल, आई एंजॉय मतलब जो वहां पर रेस्टोरेंट है, जो वहां पर लेते हैं एक्टिविटीज हैं, कोई फेस्टिवल हो रहे हैं, कोई थिएटर है, कोई वॉकिंग डिस्टेंस पर यू नो शॉपिंग है, ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ राइट. तो वो जो एलोर है ना डाउन टाउन की, जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, हसल एंड बसल, वी आर सोशल एनिमल आफ्टर ऑल सेट एंड डन राइट. वो वहीं पर वो जैसे ही वापस आएगी ना, जब ये रेस्टोरेंट खुलने शुरू होंगे, एक्टिविटीज होंगी, रिटेल खुलेगी, जो कि इंशाल्लाह अगले 3-6 महीने में दिस विल हैपन वेरी क्विकली अलॉन्ग विद ऑफिस खोलेंगे, डाउन टाउन विल कम बैक विद अ वेंजेंस. बिकॉज अभी तक क्या होता रहा है कि पिछले 12 महीनों में प्री होल्ड और सबवर्ट में तो प्राइसेस लिटरली इनसेनली
शूट अप की हैं,
मगर डाउन टाउन में वो अभी यू नो फ्लैट रही है राइट. रेंटल वैल्यूज नहीं नीचे गई हैं, मगर जो प्राइसेज है वो होल्ड अप करती रही है. ओके, मगर Now, in my opinion, जो कॉन्डो मार्केट डाउनटाउन की है, इट विल हैव टू प्ले कैच अप टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट, जो बाकी इतनी प्राइसेज बढ़ गई है. तो जैसे ही एक्टिविटी वापस आनी शुरू होती है, तो दे विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैच अप फेज इन दिस कॉन्डो. सो इन माई ओपिनियन कॉन्डोज आर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ. टोरंटो कॉन्डोज इज वॉट आई एम रेफरिंग टू, डाउन टाउन के जो टोरंटो के जो कॉन्डोमिनियम प्रोजेक्ट है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. वो जरा थोड़े से उनकी प्राइसेज फ्लैट रही है पिछले 12 महीने में, एज अपोज टू एवरीथिंग एल्स हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली. वी टॉकिंग अबाउट 10-15% टू समटाइम 20% इंक्रीज राइट. सो एंड आई थिंक द कॉन्डोज विल हैव टू प्ले कैच अप टू दैट. तो इट्स एन एडिशनल वो, मगर स्टेपिंग बैक फ्रॉम इट, ओवरऑल आने वाले 5 साल मेरी ओपिनियन में कैनेडियन रियल एस्टेट रेजिडेंशियल रियल एस्टेट हिस्ट्री के 10-5 years होंगे. एंड गोइंग बैक टू माई अर्लियर डिस्कशन, जो मैं आपको कह रहा था कि फंडामेंटल्स अगर आप मुझे बताएं तो कोई मुझे ये नहीं कह सकता, मगर रेगार्डलेस माय फंडामेंटल्स कि जो मैं तो ये आर्ग्यू करता हूं कि आने वाले 5 साल बेस्ट होंगे. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एज बेस्ट, इट्स नॉट एन अपॉर्चुनिटी लाइक 5 years अगो आई बाय रियल एस्टेट, दिस अपॉर्चुनिटी इज बेटर देन 5 years अगो. और उसके रीजन इंटरेस्ट रेट की एवरेज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये पिछले 5 सालों की एवरेज थी, वही अप हो जाएगी. इस लेवल से बढ़ जाएंगे मगर एवरेज वही रहेगी राइट. अच्छा, उसके बाद अगर आप सेकेंड फैक्टर देखें, आज से 5 साल पहले गवर्नमेंट ने हंड्रेड ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर मार्केट में नहीं डाला था, ठीक है. तो ये इवेंचुअली ये जो स्टिमुलस है, शुरू में ये जाके फाइनेंशियल सिस्टम में होता है. आपको अगर गवर्नमेंट से एडिशनल सपोर्ट मिलती है तो आप उसको अपने बैंक में रखते हैं, उसको यूज करते हैं, क्योंकि यू आर वरीड अबाउट योर इमीडिएट फ्यूचर. जब क्राइसिस गुजर जाती है तो आई सेस दैट मनी यू विल वॉन्ट टू स्पेंड दैट मनी, ठीक है. तो इस क्राइसिस में क्या हुआ, एक तो वो गवर्नमेंट का स्टिमुलस आया, फिर दूसरा ये कि देयर इज सेविंग रेट हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, क्योंकि जब लोग ज्यादातर घर रहे हैं तो इट हैवन बीन एबल टू ट्रैवल, हैवन बीन एबल टू गो टू रेस्टोरेंट, हैवन बीन एबल टू गो टू सिनेमाज, हैवन बीन एबल टू गो टू हॉकी गेम्स एंड बास्केटबॉल गेम्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सेविंग विच पीपल हैव एक्युमुलेटेड. ये क्राइसिस गुजरेगी, पीपल विल वॉन्ट टू स्पेंड दैट मनी.
सही
राइट.
सही.
देन अगेन आफ्टर दैट, अच्छा ये हमारा अपना इमीडिएट सेविंग और कैनेडा की हुआ. अच्छा, मैं आई वॉज रीडिंग अनदर आर्टिकल, मगर ये यूएस ने जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अपनी इकॉनमी में डाला है उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको होगा. दे प्रोजेक्टिंग ए ग्रोथ ऑफ समवेयर बिटवीन 6-7% विच इज ह्यूज फॉर अ डेवलप्ड सोफिस्टिकेटेड इकॉनमी राइट. मगर उसके यूएस के बाद उनके स्टिमुलस का जो सबसे डायरेक्ट बेनिफिशरी है वो उनकी नेबरिंग कंट्रीज है, विच इज कैनेडा एंड मैक्सिको राइट. तो कैनेडा की जीडीपी को जो प्रेज्यूम नंबर है वो ये कि एटलीस्ट मिनिमम 0.5% हम ऑफ जीडीपी हमारी इंक्रीज होगी जो यूएस ने जो अपनी इकॉनमी में पैसा डाला है. तो दैट्स द यू नो, तो इट्स ह्यूज फंडामेंटल. फिर आप देखें रियल एस्टेट मार्केट के जो सबसे बड़ा ड्राइवर होता था, आप इमिग्रेशन की बात करें थी, पिछले 5 सालों की एवरेज जो है, नॉट द लास्ट ईयर प्रोसेस किया, इज अबाउट 2.5 लाख इमिग्रेंट पर ईयर राइट. आने वाले 5 सालों की एवरेज would be in excess of 400,000 immigrants every year. आप यानी कि 2.5 लाख से अगर 400 पे जाती है, you're talking about over a 50% increase in immigration. And real estate would be a direct beneficiary of that. Foreign student, आपके पिछले 5 सालों के अभी आई थिंक somewhere about 2-2.5 लाख student annually. In coming years, that number is, I mean, is supposed to be projected as 650, but आप अगर उसको 5 लाख भी लेकर आए, you have doubled at least more than double your foreign, 100% increase in foreign students, right? Mm-hmm. So if you look at all these factors, it only shows that aane wale 5 saal, pichle 5 saalon se bhi behtar honge. And just to put things into perspective, pichle 5 saalon mein hamari jo increase hai, jo is about 50%, 10% annualized ka figure aata hai roughly, agar you know, you take an average, right? So yani agar sirf pichle 5 saalon ke average lekin nikle, to jo property aaj million dollar ki hai, wo sirf 5 saal baad potentially could be as much as $1.5 million. Now let's translate it into a pre-construction unit. Ab aapne ek support kare, and I'm using a big number, sorry, usme aap lakh kar le, million kar le, but just to make a point. So magar aapne ek $1 million ka agar aapne condo ko kiraya, usme aapne 15% ki down payment ki over the next
और अदनान इसका अगर देखा जाए ना, मुझे याद है माजिद भाई, हमने अपने क्लाइंट को घर लेके दिया था. दिस मैन इज फ्रॉम इंडिया, मुस्लिम, उनको मुस्लिम थे. उन्होंने क्या किया था, 5 या 6 घर दिए थे और 6 के 6 घर जो थे वो असाइनमेंट क्लॉज के ऊपर थे. और हर घर जितने में उन्होंने, याद है माजिद भाई,
yes,
और
yes.
सारे उस वक्त ना मल्टीप्लाई करते फिर रहे थे कि उन्होंने, इसमें मैं कोई एग्जैजरेट नहीं करी, ये ब्रैम्पटन नॉर्थ की बात है, तो उन्होंने एक एक घर ना मेरा ख्याल 4.5-4.5 लाख का लिया था. तो मेरी एक क्लाइंट ने 875 का एक ने खरीदा था, उसकी दूसरी बहन ने भी 800 प्लस का खरीदा था. तो उन्होंने एक एक घर के ऊपर तकरीबन $4-4 लाख बनाया था, और उस इंसान के 6 घर थे. अच्छा, फिर क्योंकि जितनी प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं इनमें असाइनमेंट क्लॉज भी होती है. असाइनमेंट क्लॉज यानी यू शुड सी कि यस आई कैन क्लोज इट, बट इन केस इफ आई वांट टू सेल इट ऑन असाइनमेंट क्लॉज I can sell it. और रिलीजन के बीच में कारोबार ऑफ कोर्स बिल्कुल है. 6712 मैं बिल्कुल आपके कंटिन्यूअसली टेक्स्ट आ रहे हैं. यस, बट इफ somebody हैज अफोर्डेबिलिटी, पुटिंग मनी और कीपिंग मनी इन द बैंक्स डज नॉट गिव एनीथिंग, एंड देयर आर वेरी मेनी पीपल हु हैव मनी जो कि उनकी बैंक्स के बीच में स्टॉल्ड फॉर्म के बीच में, या मतलब पड़ी है. आप क्या, जो लोग इंटरेस्ट देते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट देता है बैंक अदनान? I don't think so, 1%. I doubt it very much. I doubt it very much. But उससे अगर आप वो करते हैं, you have the option कि अगर आपकी levies capped हैं, आपकी assignment clause आपके पास है. But yes, look at yourself के yes, in case अगर मैं ना उसको assignment पे बेच सकूं, तो I must have a capacity to close the property. And it's a business. It's a business, and that's rather than आपके पास अगर पैसा है, अगर रिलीजन के लिहाज से चलूं तो फिर तुम्हें पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं होने चाहिए ना. आई कैन गिव एवरीथिंग.
नहीं नहीं नहीं, आई मीन आप उसको असाइनमेंट दे सकते हैं, असाइनमेंट ऐसे भेजते हैं,
असाइनमेंट पे भेजते. बल्कि अदनान मुझे याद है, मेरी एक क्लाइंट ने असाइनमेंट पे घर भेजा था और आपके एक क्लाइंट ने खरीदा था, और मुझे याद है हमने बुक कराया था 199 का, उन्होंने भेजा था 299 का. 30,000 डिपॉजिट कराया था, उसके फौरन बाद हम उसी जगह पे वो मेरी क्लाइंट घर लेने के लिए गई, तो वो वाला इट वाज अ बैचलर सुइट, तो उसकी कीमत 5 लाख थी.
मगर देखे ना, उनकी इक्वेशन देखेंगे, अगर उन्होंने 30,000 की इन्वेस्टमेंट की, राइट, और उसके ऊपर उनको 4 साल में विदाउट डूइंग एनीथिंग, कोई फाइनेंसिंग नहीं ली, कोई
1 लाख मिल गया,
कोई जो ना कोई मॉर्गेज नहीं अरेंज की, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट फीस नहीं दी, सिर्फ उन्होंने एक एग्रीमेंट परचेज किया, 30,000 की इन्वेस्टमेंट की, और अगर उनको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया इन 4 ईयर्स,
एग्जैक्टली, और कोई HST नहीं पे करना पड़ा. इसका मकसद है कि रियल स्टेट, एंड लेट मी टेल यू,
नहीं मेरी अभी एक दोस्त है, उसको मैंने एक यूनिट बेचा था इन टोरंटो आज से कोई आई थिंक 2015 में 384,000 का, उसने उसके ऊपर 75,000 का कुछ 1.5 साल के ऊपर डिपॉजिट दिया था. अभी उसको महीना पहले उसकी ऑक्यूपेंसी मिली है और उसने उसके अप्रेजल कराया, तो वो कोई 8 लाख.
दूर क्यों जाते हैं, आपको पता है कि मैसी टावर की जब बुकिंग हुई थी तो मेरे एक क्लाइंट मेरे साथ गए, तो 4.5 लाख का, मैं नाम भी ले देती हूँ, बहुत प्यारा मेरा भाई है इकराम भाई, मेरे साथ गए, कहते ले बाजी ऐसी ले बाजी 4.5 लाख का एक निका जहा अपार्टमेंट ही लेना है, वो बड़े बड़े घरों में रहने के आदि है. तो आप यकीन कीजिएगा, चार साल के बाद वो जो 4 लाख का अपार्टमेंट था वो 8.5 लाख का अपार्टमेंट था, ठीक है? जी आप क्या कहें,
और मतलब ये ना कि उन्होंने 4.5 लाख डॉलर तो नहीं दिए ना, उन्होंने तो उसके ऊपर 15% का डिपॉजिट दिया था, जो कि
20% उस जमाने में 20%
डॉलर
या 80,000 डॉलर
दिया, 80,000 के ऊपर अगर उनको,
और बहुत से लोगों ने इसको असाइनमेंट पे बेचा भी, यानी आपने 80,000 पे करने के बाद 4 साल के बीच में असाइनमेंट क्लॉज पे अगर आपने 7 लाख का भी बेच दिया तो 4 लाख 3 लाख क्यों मेड, 300 HST, इट वॉज अ गुड डील. सो अदनान, इस वक्त व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स एट द मोमेंट? वी डू हैव वन प्रोजेक्ट विच आर वी आर अनाउंसिंग इन डाउन टाउन टोरंटो. सो व्हाट प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल एट द मोमेंट फॉर द कॉन्डोमिनियम्स और फॉर द होम्स?
देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमने अभी पिछले महीने को लेवरली 2 प्रोजेक्ट टाउन हाउसेस के किए हैं. आजकल हम एक सेमी डिटैच घरों का वेस्ट एंड के ऊपर शायद अगले महीने में प्रोजेक्ट करेंगे. इस महीने वी आर डूइंग 2 गुड प्रोजेक्ट्स इन कॉन्डोस, तो मतलब हम तो वी ऑब्वियसली डू इट इन डिफरेंट कैटेगरीज.
अब अदनान, मेरे जैसे की सिफारिश भी तो नहीं है ना. अब मैं अगर आपके पास अपना कोई क्लाइंट लेके आऊं तो आपके पास तो वर्कशीट्स ही इतनी होती हैं कि 2 दिन के बीच में आप घर भी बेच देते हो. मेरे जैसा बूढ़ा बंदा जब 1-2 क्लाइंट अपने लेके भी आएगा तो आपने कहना आरफा बाजी सारे बिक गए, 1 दिन में तो आप सारे क्लाइंट सारे अपार्टमेंट बेच लेते हैं.
अनफॉर्चुनेटली वो सेलर मार्केट है, तो वो हमारी अपनी डेवलपर की रिस्ट्रिक्शन है, सेलर मार्केट है, सेलर इज इन ड्राइविंग पे. तो ये लिटरली ये फैक्ट है कि जिस क्लाइंट को हमने मैटर ऑफ क्लाइंट लेना चाहते हैं, मैटर ऑफ क्लाइंट लेना चाहते हैं, हम उनको यूनिट दिलवा सकते हैं, राइट? मतलब ये कि अगर आप शुरू में अगर लिटरली देखें, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी ये बात मुनासिब ना लगे, मगर लिटरली मेरे आजकल जिन क्लाइंट को हम किसी प्रोजेक्ट में फर्स्ट फेज में अगर हम यूनिट ले देते, क्योंकि हमारी नजर में बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, तो लिटरली स्विंग देम अ फेवर, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट यूनिट दिस इज सेलर मार्केट, इज सो मच डिमांड फॉर इट. मैं आपको आइडिया देता हूँ, मैंने अबाउट मिड जनवरी में हमने एक प्रोजेक्ट, जब साल का शुरू था मेरा नहीं ख्याल था, एक हम टाउन हाउस का प्रोजेक्ट कर रहे थे विटमी में, मेरी बिल्डर से बात हुई, ऐसे ही वो मेरा जानने वाला था, उसने कहा कि यार ये प्रोजेक्ट भी आप प्रमोट करना है, मैंने कहा हाँ करना है. मैंने ऐसी कैजुअली अगले दिन उसके साथ वी वर गोइंग टू एक हमारी ट्रेनिंग थी, उसके पीछे जाकर मैंने वो 10 मिनट की उसकी प्रेजेंटेशन के लिए कर दी. उससे फॉलोइंग डेज आई वॉज गोइंग ओवरसीज ऑन अ बिजनेस ट्रिप, तो मैंने खैर को ध्यान नहीं दिया, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी मिड जनवरी की. उनके पास टोटल 111 यूनिट था, उन्होंने 50 यूनिट रिलीज करने थे इन टाउन हाउसेस इन रिटवे. आई वेंट एंड इट वॉज अराउंड एवरेजिंग अबाउट $800,000 पर टाउन हाउस, विच वॉज आई फेल्ट वॉज अ लॉट ऑफ मनी. एंड मैं जी अगले दिन, मैं मुझे याद थी ये 3 बजे मैंने प्रेजेंटेशन किया, अगले दिन 5 बजे मैंने एयरपोर्ट जाते हुए अपनी एक मैनेजर को कॉल किया, उसमें मैंने डिफरेंट अपडेट लेते लेते आखिरी आइटम मैंने पूछा कि वो जो हमने कल प्रोजेक्ट किया था उसकी कोई वर्कशीट वगैरह तो नहीं आई. मेरा ख्याल था बहुत होंगे 3 तो कोई शायद ही कोई आई हो. एनीवे उसने कहा 34, तो मैंने उसको कहा यू मीन 3 to 4, लेकिन नो 34 वर्कशीट. मैं आई वाज वेरी टेकन अबैक. मैं उसके बाद 12 घंटे की फ्लाइट के बाद से उतरा, अगेन आई कॉल्ड अप कि क्या है उसमें, मैंने कितनी वर्कशीट है, 60 वर्कशीट. अब बिल्डर के पास टोटल 111 यूनिट है, 50 रिलीज करने. मैंने बिल्डर को कॉल किया, मैंने कहा तुम्हारे पास इस एक्टिविटी की क्या पोजीशन है? उसने कहा अदनान हमारे पास डायरेक्टली कोई 2200 इंक्वायरीज है.
वाओ,
ठीक है. आप मुझे ये बताएं, फॉर्चुनेटली वी हैड अ वेरी वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप विद द बिल्डर.
और मैं इसी प्रोजेक्ट के बारे में कहती हूँ कि आपने तो वो ये प्रोजेक्ट का जो आप बता रहे हैं, मेरे पास एक क्लाइंट इसी प्रोजेक्ट के लिए आता है, और ये जब सारी वर्कशीट्स की शीट्स की अलॉटमेंट हो गई तो बंदे ने मुझे कॉल किया, मैंने कहा ओके लेट मी आस्क. सो आई कॉल्ड, पता चला कि जी वो एक दिन में कीमत 50,000 बढ़ा दी है बिल्डर ने, जो सेकंड फेज में फिर टाउन हाउसेज आए.
अब जैसे अब मगर ये कि एनी वे लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट फेज अपॉर्चुनिटी. तो हम ये अभी थर्सडे को एक कॉन्डो बिल्डिंग लॉन्च कर रहे हैं इन डाउनटाउन, इन मिड टाउन डाउनटाउन कह लें, लोअर और डंडा स्ट्रीट वेस्ट के इलाके में. इट इज राइट ऑपोजिट म्यूजियम ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट, और वहां पर वो बिल्डिंग के जो यूनिट्स हैं वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल कोई 6.5 लाख से एंड ऑब्वियसली गो टू $1 मिलियन, मगर 6.5-7 लाख की एवरेज प्राइसिंग होगी. 15% डिपॉजिट रिक्वायर्ड होगा, तो 15% अब ये देखना कि अप्रॉक्सीमेटली 100 मतलब कि $30,000 शुरू में $30,000 प्रोबेबली
नो बट 15% डिपॉजिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना
ओवर वन ईयर राइट ना तो वही ना तो 1,00,000 का डिपॉजिट कुछ साल के ऊपर वो स्प्रेड आउट हुआ होगा मिनिमम टू मिनिमम राइट तो 30 से 35 हजार आज 35,000 3-4 महीने में 30-35 हजार एक साल में राइट उसमें आई टूडे आई कैन हमारे पास अबाउट जो भी हमने आज उसकी कैंपेन लॉन्च किया हमने कहा जो हमारे पास पहले 20 लोग आएंगे उनको वी विल मेक श्योर दे गेट अ यूनिट क्योंकि ये हमने बिल्डर से कमिटमेंट लिया. अच्छा द प्रोजेक्ट इज एक्सीलेंट दिस इज द फेज वन पहला टावर है तो इस एक ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें 3 टावर लॉन्च होने हैं.
नाम क्या है
राइट तो पहले यानी कि अभी तो जब बैलेंस ऑफ टावर बेचेगा उसी के बिल्डर कीमतें बढ़ा देगा फिर जब नेक्स्ट टावर फॉल में लॉन्च करेगा उसकी वो कीमतें बढ़ा देगा नेक्स्ट टावर प्रॉब्ली अगले साल लॉन्च करेगा उसकी कीमत बढ़ा देगा तो ऑटोमेटिकली जो यूनिट हमने पहले दिन लिया उनकी कीमत ऑटोमेटिकली बड़े शॉर्ट पीरियड में सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी.
सही सही
मतलब इस प्रोजेक्ट गुड इनफ जहां पर मैं जाती तौर पर खुद लेने
इसकी कंप्लीशन क्या है कंप्लीशन डेट क्या है
अबाउट 4 years अप्रोक्सीमेटली
4 years नो प्रॉब्लम. सिटीस्केप की आप वेबसाइट भी देख लीजिएगा. अदनान बशीर का बे इंतहा शुक्रिया. सो दिस प्रोजेक्ट इज व्हाट इज द इंटरसेक्शन फॉर दिस प्रोजेक्ट
ब्लोर स्ट्रीट एंड दंडा स्ट्रीट वेस्ट
Bloor and Dundas, Dundas West, no problem at all. Adnan, thank you very much. So, the completion will be 2024. Levies cap na iski aur assignment clause hai.
ये सारी चीजें हम अपने बिल्डर से negotiate करते हैं. अभी ये इतनी ग्राउंड फ्लोर अपॉर्चुनिटी है इसके अभी लॉन्च भी नहीं हुई है. लॉन्च 2 दिनों के बाद है. मगर अगर लोगों ने हमें अभी कॉन्टेक्ट करना है वी कैन गेट द वर्कशीट एंड वी कैन मेक श्योर कि हम उनको यूनिट कर लें. Obviously, आप मेरा ख्याल है कि आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिसको आइदर वे आप मगर उनको
अदनान का मैं नंबर दिए देती हूँ. अदनान आप अपना नंबर 4190524122222 अदनान
नहीं नहीं मुझे कॉन्टेक्ट करना है तो डायरेक्टली मेरे सेल पर कर लें
4116 मैं डर गई मैंने कहा अदनान ने कहने भाई यार आपने मेरे सेल नंबर दे दिया 4163151516 आप अदनान को डायरेक्ट कॉल कर लेंगे तो अदनान से कहिएगा भाई अल्फा को मिठाई जरूर
कॉल कर लें क्योंकि आपके साथ
आई डोंट अल्लाह का शुक्र है अदनान तल्लुकात से बढ़ के मेरे पास और कोई चीज नहीं और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो खजाना है वो मेरे तल्लुकात हैं. बहरहाल मेरा नंबर भी आपके पास है अदनान का नंबर 4163151515. इट्स अ प्रोजेक्ट इन डाउनटाउन एज अदनान सेड इट्स अ ब्लोर एंड डंडास ऑफ कोर्स ही इज आवर सीनियर और मेरा नाम आरफा मैं आई आल्सो वर्क विद इन देयर ऑफिस एंड मेरा नंबर इज 6478986245. अदनान थैंक यू वेरी मच एंड आई विल प्रोबेबली बॉदर यू ऑन थर्सडे अगेन.
थैंक यू
God bless. बहुत शुक्रिया. आइए साहब मैं आपको उसको न्यूज की तरफ लेके चलना चाहती हूँ. अब इनसेन आप इस न्यूज को देखिएगा. ये क्या हुआ कि मिस श्रीलंका जो विनर थी ना वो उसने मिस श्रीलंका की जो विनर थी उसके सर पे ताजपोशी कर दी गई. मिसेस श्रीलंका जो भी पेजेंट विन करता है मिसेस श्रीलंका उसको डिक्लेयर कर दिया गया उनके सर की ताजपोशी कर दी गई. एंड देन मिस वर्ल्ड भी उस स्टेज के ऊपर मौजूद थी. ये 3 खवातीन की कॉन्स्पिरेसी थी. आप इस वीडियो को देखिए उसके बाद मैं आपके साथ वापस आती हूँ एंड वी विल प्ले दिस वीडियो. जो लोग सुन रहे हैं आप सुन भी दीजिएगा कि मिस वर्ल्ड उसके बाद स्टेज के ऊपर आती हैं और वो ये कहती हैं कि एथिक्स अलाउ करती हैं कि मिस श्रीलंका जो है ये मिस वर्ल्ड जो है उनको डाइवोर्स नहीं होना चाहिए. सो दिस विनर इज डाइवोर्स तो she ripped off the crown from the winner's head and she said the runners jo hai deserve for this crown aur wo usne winner ke sar se utar ke runner ke sar pe rakh diya. winner wo stage chhod ke chali jati hain magar baad mein pata chala ki the winner of course idare ne mukammal taur pe uski jaanch padat ki hui thi. the winner was is not divorced they say she's separated but she's not डिवोर्स, और इन पेजेंट्स के ये जो विनर्स होते हैं, चाहे वो मिस वर्ल्ड हो या फिर मिस इंडिया हो या मिस श्रीलंका हो, उसके लिए दे हैव टू फुलफिल ऑल दी जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करना पड़ता है. जरा ये वीडियो देखिएगा, और मैं इस वीडियो को देखने के बाद जो मेरे दिमाग में आया, यानी जो जो कंटेस्टेंट है उसको अपनी जुबान और अपने अल्फाज, और मेरा ख्याल है इस हरकत के बाद जो मिस वर्ल्ड है इवन उससे भी उसका ताज छीन लिया देना चाहिए.
डेफिनेटली दैट इज अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ
एथिक्स ऑफ द क्वीन. जो भी ब्यूटी पेजेंट होती है या जो जो भी ब्यूटी क्वीन होती है या मिस वर्ल्ड होती है, ये उस एथिक्स को पूरा नहीं करता. तो एथिकली उनके बिहेवियर के मुताबिक आई थिंक द मिस वर्ल्ड शुड लूज हर क्राउन. देखिए इस वीडियो को देखने.
वर्ल्ड 2020 गोज टू नन अदर देन contestant number 20. Congratulations. Been waiting for, Sri Lanka has been waiting for, and she's been sashed as Mrs. Sri Lanka World 2020. Ladies and gentlemen, put your hands together to you, Mrs. Sri Lanka World 2020.
I have a small request. As for the Mrs. World Inc., there's a rule that you all have to be married and not divorced. So I'm taking my first step, saying that the crown goes to the first runner-up.
स्ट्रेंज के वो जो मिसेज श्रीलंका है ना, वो बड़ी काम खड़ी है. वो उसको कह रही है कि व्हाट आर यू डूइंग. ठीक है, तो उसने उसका क्राउन उतारा है और रनर्स के सर के ऊपर रख दिया, जबकि रनर रो भी रही है. और विनर जो है ना, उसने मिसबिहेव नहीं किया, उसने उसको रोका भी नहीं है, जो मिसेज वर्ल्ड है उसको, और वो रोती हुई स्टेज को. अब मुझे हैरत ये होती है कि इस पूरे मामले में जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने इंटरवीन क्यों नहीं किया.
सही बात है,
उसको उन्होंने she did not create a scene. और वो अब यहाँ पे मैं ये कहती हूँ, दिस इज ऑल मेंटल इलनेस. जब मैं इस न्यूज की डिटेल की तरफ जब मैंने इसको जाके देखा, मिसेज श्रीलंका जो है, कहते हैं कि जब उसके सर से क्राउन उतारा गया, तो आपको पता ही है क्राउन फौरन उतरा नहीं. आप देखिएगा, ये देखें, वो उनके सर से, वो रोक रही है उसको, शी इज जस्ट ट्राइंग टू स्टॉप कि भाई तुम क्या कर रही हो. मगर उसने सीन क्रिएट नहीं किया. और इस मरहले पे कहते हैं, देखिए उसकी आउच की आवाज भी निकली है, और कहते हैं कि ये मिसेज श्रीलंका जो विनर थी, उसने कहा कि मेरा सर जो है इंजर्ड भी हुआ. तो मिस, अब वो कहते हैं कि बीबीसी रिपोर्ट ने बताया है कि इस ये पुष्पिका डिसल्वा है, इन्होंने टाइटल विन किया था मिसेस श्रीलंका का एज ए विनर. और कैरोलिन जोरी जो है, उन्होंने उनके मिसेस वर्ल्ड मिसेस श्रीलंका के सर से क्राउन उतारने के बाद जो रनर्स अप थी उसके सर के ऊपर रख दिया. हालांकि उसने ओपनली, और ये तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा सू का मामला माजिद भाई बनता है, कि शी सेड कि क्राउन लेने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि मैरिड हो, और मैरिड हो बट शी इज डाइवोर्स्ड, सो शी डज नॉट डिजर्व दिस क्राउन. वेयर एज जब इसकी पूरी बैकग्राउंड चेक की गई थी पहले, तो यही पता चला था कि शी वॉज शी इज नॉट डाइवोर्स्ड, शी वॉज सेपरेटेड. ये तो मैं मेंटल इलनेस के बारे में आपको बता रही थी कि दिस इज अ मेंटल इलनेस. और उसके बाद जो रनर्स अप है उसने आके, जो विनर थी उसको आके स्टेज पे बोलने का मौका नहीं दिया गया था. अलबत्त रनर अप क्योंकि तो बेख्तियार वो शाहीन, वो जो क्या हुमायूं परिंदे का सर पे बैठने वाली बात है, तो उसने कहा कि आई एम सरप्राइज. सुनिएगा उसको. हम नहीं सुना पाएंगे. तो बहरहाल ये तो एक सूरत हाल थी जो मुझे आपके साथ. साहब दुनिया में हर 17 घंटे के बाद एक अरबपति बन रहा है. आप देखिए, मुझे लगता है कि ये पैसे की डिवेल्यूएशन है, पैसे की बेकदरी है. हर 17 घंटे के बाद एक शख्स जो है इस वक्त अरबपति बनने लगा है. 2000 जो अमेजोन के जेफ बेंजोस हैं वो नंबर वन है. जो फेसबुक के हैं, नहीं हमारे हमारे टेस्ला के जो हैं एलन मस्क जो हैं वो ही इज नंबर टू. बिल गेट्स नंबर थ्री के ऊपर चले गए हैं. दैट इज सरप्राइजिंग. यानी
मगर आरफा जी, ये इनका ये ना ये
ऊपर तले होता रहता है,
ऊपर नीचे होते रहते
मगर,
हैं. मगर ऑन द स्टॉक मार्केट
आई टोटली एग्री. मगर जेफ बड़े अरसे से नंबर वन है.
एग्जैक्टली,
ठीक है. और जो आपके टेस्ला के हैं, ही इज पिछली रिजल्ट के बीच में भी ही वॉज नंबर टू. और जो
एक और है, आप नाम भूल रहे हैं उसके, अब्दुल माजिद जमाल.
कहते हैं कि 2020 में दुनिया भर के अरबपति अफराद के हिसाब से 13.1 trillion dollars तक पहुंच गए थे, जो कि 2019 में 8 ट्रिलियन डॉलर्स थे. आप इमेजिन कीजिए 2019 से अगर 2000 द डिफरेंस ऑफ वन ईयर, ये 8 ट्रिलियन से 13 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गए थे. 5 ट्रिलियन का डिफरेंस आया था. जो एलन मस्क हैं वो इस वक्त दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स हैं. और ये कहते हैं कि 2020 में 21वें नंबर के ऊपर थे. टेस्ला ने आपको बताया दिक्कत का वक्त भी बहुत गुजारा है. बिल गेट्स जो हैं दार एक जमाने में टॉप नंबर वन भी रहे, मगर इस वक्त टॉप नंबर थ्री में भी वो शामिल नहीं थे, बल्कि चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं. जबकि एक कंपनी है LVH नामी एक कंपनी है, उसके मालिक जो है बर्नार्ड आर्नेस्ट तीसरे अमीर हैं. तो बिल गेट्स अब तीसरे की बजाय भी चौथे नंबर पर चले गए हैं. अब वो कहते हैं फोर्ब्स के मुताबिक 2020 के दौरान रिकॉर्ड 493 अफराद अरबपति बने. और यानी औसतन हर 17 घंटे के बाद दुनिया में एक शख्स अरबपति. आप इमेजिन कीजिएगा, ये है इंतहा, पैसे की इंतहा. कि एक साइड पे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं, और दूसरी एक्सट्रीम पे अगर आप देख लेते हैं तो ऐसे अशख़ास हैं जो कि हर 17 घंटे के बाद बिलियनर बन रहे हैं. बहरहाल ये तो थी एक सूरत हाल. एक कमर्शियल, वेलकम बैक. डॉक्टर नाजिया हमारी डेंटिस्ट हैं. डॉक्टर नाजिया के दो क्लिनिक्स, एक क्लिनिक इनका ब्रैम्पटन में और दूसरा भी ब्रैम्पटन में, मगर मिसेस सागा एंड फाइनेंशियल ड्राइव पे. डॉक्टर नाजिया, तमाम लेटेस्ट डेंटिस्ट्री के लिए आप उनसे राब्ता कीजिए 9058721100. पिज्जा प्रोज का जिक्र करना चाहती हूँ कि अगर आप इस फ्रेंचाइज को लेना चाहते हैं, आगे आगे जो मुझे एक क्लाइंट मिला डाउनटाउन में, उन्होंने घर लेना था, एंड दे सेड कि नो, हमें घर वो नहीं चाहिए जिसमें किचन हो. वी डोंट नीड अ किचन. तो सर अब तो मेरा ख्याल है आगे आगे जो जनरेशन आ रही है, ये ओवर ईट्स और फूड डिलीवरी जिंदाबाद, और पीपल वॉन्ट नीड किचन्स. तो पिज्जा प्रोज के इश्तियाक मलिक से आप रब्ता किए. दे ऑलरेडी हैव 6 डिफरेंट लोकेशन. और अगर आप भी कहीं कैलिडोनिया साइड पे पिज्जा टर्न की ऑपरेशन स्टार्ट करके देंगे. और इश्तियाक साहब का नंबर 4165087683. हियर मैक्स का जिक्र करना चाहती हूँ. अगर आपने कुवत समात को बेहतरीन से बेहतरीन करना चाहते हैं तो हियर मैक्स 4167928792. क्विकली एक कॉल की तरफ, अब तो मगरिब का वक्त भी हुआ है, कल मुलाकात कराऊंगी. आज मैंने आपकी लाजमी तौर पे एक मुलाकात करनी थी. इस वक्त बहुत बड़ा कंसर्न है लॉन्ग टर्म केयर का, और मैं डिपार्टमेंट में से ही किसी को लॉन्ग टर्म केयर की इंफॉर्मेशन के लिए लेके आना चाहती थी. साहब हमारे यहाँ اللہ برے وقت سے بچائے، یا اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو برے وقت سے بچانا اور ہمیں بہتر. وہ کہتے ہیں نا کچھ تو شہر دے لوگ بھی ظالم سی، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. مجھے بے اختیار یاد آیا ہمارے ایک بہت اچھے ملنے والے تھے، مارکم میں رہا کرتے تھے، ان کا ایک فیملی ممبر پاکستان سے آیا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ یار اسلام میں انشورنس بالکل منع ہے اور یہ آر ای ایس پی واری ایس پی بالکل اس چکر کے بیچ میں نہ پڑی اسلام میں. خیر یہ بھی بڑا پیارا لڑکا تھا. پھر مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب ان کا بیٹا ہوا نا تو میرے گھر میں مٹھائی لے کے آئے، پریکٹیکلی اتنا بڑا تھال بھرا ہوا مٹھائی کا لے کے آئے. خیر معاملہ گزرتا رہا. کوئی 7-8 سال کے بعد، 10 سال کے بعد اس شخص کا مجھے فون آیا، تو مجھے کہتے بھائی عارفہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا آپ پتہ نہیں، وہ بڑے عرصے سے میری اس شخص سے بات بھی نہیں ہوئی. بھائی عارفہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. ہی واز ہیوی ہارٹ کے ساتھ تھا. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا باجی وہ نہیں تھے میرے بردر ان لا جنہوں نے مجھے منع کیا تھا. آپ کو پتا ہے ان کے بچے یونیورسٹی کے، انہوں نے اپنے سارے بچوں کے لیے آر ای ایس پی لی ہوئی تھی، اور جب میں نے اپنے بچے کی آر ای ایس پی لینی چاہی تو انہوں نے منع کر دیا تھا. اور اب مجھے پتا چلا ہے ان کے پاس تمام طرح کی انشورنس ہے مگر انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا. آئی سیڈ یو نو یو ہیو یور اون برین. جب آپ گاڑی آپ چلا رہے ہیں اپنی زندگی کے، اور آپ اپنی گاڑی چلاتے وقت مشورہ ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے شخص سے لینا چاہتے ہیں کہ بھی سڑک پہ کس طرح چلنی ہے، تو یو نو دیٹس یور. تو انہوں نے مجھے کال کیا. تو کہنے کی بات یہ جس سسٹم میں میں اور اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فورس اینی بڈی، بٹ جس سسٹم میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، آپ دیکھیے ڈچ کمیونٹی اتنی اویئر ہے. اگر آپ سٹیلز کے اوپر چلے جائیں نا برامٹن میں، سٹیلز اینڈ میکلاکلن پہ، سٹیلز اینڈ میکلاکلن پہ، شیریڈن کالج کے ویسٹ سائڈ پہ آپ کو 3 بڑی بڑی بلڈنگز نظر آئیں گی. یہ ڈچ بلڈنگز ہیں، اور جو ڈچ ینگ لوگ ہیں نا وہ جوانی سے ہی اس بلڈنگ کی ممبرشپ لے لیتے ہیں، اور وہ ایک نامینل سی اماؤنٹ پر منتھ پے کرتے رہتے ہیں. اینڈ آئی ہیو سین اولڈ پیپل ان، مجھے آپ کو بھی ماجی سے جانے کا اتفاق ہوا.
ویری ویل مینجڈ.
اینڈ دس از ناٹ کہ وہ اپارٹمنٹ ہے، دس دیز آر 3 یا 4 بلڈنگز ہیں، نیچے کچن، نیچے ان کے بڑے بڑے ڈائننگ رومز ہیں. ظاہر ہے یہ سبسڈائزڈ جگہ ہے، یہاں پہ آپ کو کم کرائے کے اوپر یہ مل جاتی ہیں. وہاں پہ فل ٹائم نرسنگ سٹاف ہے، فل ٹائم ڈاکٹرز ہے وہاں پہ، جو لوگ وہاں کے آکوپینٹ ہیں، آپ کو میڈیسن چاہیے میڈیسن بھی پرووائڈ کرتی ہے، بیکاز گورنمنٹ بھی ایسے پروجیکٹس کو پھر آگے سپورٹ کرتی ہے. تو وہ پھر اپنے بچوں میں ایسی اویئرنیس رکھتے ہیں کہ ان کے ینگز فرام دا ڈے ون. ابھی پاکستانی کمیونٹی کی کوئی ایسی نہیں ہے، آئی تھینک مسلم ویلفیئر سینٹر اگین. یہ نہیں کہ یہ کوئی کمرشل ہے تو میں یہ بات کرتی ہوں. ریسنٹلی ایک خاتون کا مجھے فون آیا، میں آئی واز آن دا ایئر دیٹ ڈے، سیٹرڈے کا پروگرام تھا، تو میں ایئر پہ نہیں تھی، میں ایک بچی سونل پروگرام کر رہی تھی، تو میں اس بچی کو انکریج کرنے کے لیے ایئر پہ آئی. میں جو ہی ایئر پہ سے آف گئی تو مجھے خاتون کا فون آیا، اس نے کہا جی میرا بیٹا صبح صبح گم ہو گیا ہے، اور پلیز آپ اناؤنس کر دیں کسی نے اگر دیکھا ہو. خیر میں فوری طور پہ دوبارہ ایئر پہ جاتی ہوں، اور میں نے سونل سے اور ویسنا سے ریکویسٹ کی لیٹ می گو آن دا ایئر ود ہر. تو پتہ چلا کہ جی رات کو 3:30 بجے کے قریب بچہ اپنا کمپیوٹر لے کے گھر سے چلا گیا. بچے کی عمر 18 سال، وہ مارچ کے 1 مارچ کو وہ 18 سال کا ہو گیا تھا، اور آپ سمجھیے گا کہ 10 دن کے بعد وہ بچہ اپنے گھر سے صبح صبح دوست لینے کے لیے آتے ہیں اور وہ بچہ چلا جاتا ہے. خیر آئی واز کنسرن، اور میں نے 3 دن کے لیے وہ درد اور وہ جو سیپریشن ہے نا اپنے دل میں، اور مجھے ایسے لگتا تھا میرے پیٹ میں کچھ ہو گیا ہے جب میں اس بچے کا سوچتی تھی یا اس ماں کا سوچتی تھی. 3 دن کے بعد مجھے میری، جب میں ڈیلی ان سے کال کر کے پتا کرتی تھی، تو مجھے پتا چلا کہ اینڈ یس یہ مجھے پتا تھا کہ اب کیونکہ بچہ 18 سال کا ہو گیا ہے تو پولیس نے پیرنٹس کو انفارم نہیں کرنا تھا. بچہ جہاں پہ بھی گیا ہے اگر وہ بچہ مل بھی جاتا تو پولیس نے پیرنٹس کو انفارم نہیں کرنا تھا، کیونکہ اس بچے نے 18 سال کا انتظار کیا. ناؤ ہی از این اڈلٹ اینڈ دا پولیس ول نیور ٹیل پیرنٹس کہ بچہ کہاں پہ ہے. 3 دن کے بعد میں نے ان سے جب میری 4 دن کے بعد بات ہوئی تو خاتون نے مجھے بتایا کہ ہاں جی بھائی عارفہ پولیس نے ہم کو بتا دیا ہے کہ وہ ایک یہ کون سے ہوتے ہیں شیلٹر میں چلا گیا ہے. اور پولیس نے جب ان سے کہا کہ تمہارے پیرنٹس، اس نے کہا نو آئی ڈونٹ وانٹ مائی پیرنٹس ٹو نو ویئر آئی ایم. اور اب یہ شیلٹر کیا ہے؟ اس شیلٹر میں اسی طرح کے مختلف بچے ہیں، ان شیلٹرز میں حلال فوڈ بھی نہیں سب ہوتی، اور مجھے اس کا گلا بھی کوئی نہیں ہے، یہ تو اس سسٹم کے شیلٹرز ہیں نا، الحمدللہ بچے کو ایک چھت تو آخر کار مل گئی نا. مسلم ویلفیئر سینٹر کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک شیلٹر وٹپی سینٹر پہ، وٹپی سائٹ پہ ایک شیلٹر بنایا ہے وچ از ناٹ مینٹ اونلی فار مسلمز، بٹ یس دے سرو حلال فوڈ ان دیٹ سینٹر. میں غلط تو نہیں کہہ رہی نا ماجد بھائی، یہ مسلم ویلفیئر سینٹر کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، بٹ خدا نخواستہ، اور یہ واقعہ جس کا میں ذکر کر رہی ہوں یہ ملٹن کا واقعہ ہے. اب بچہ اگر ملٹن میں ہے یا بچہ اگر اوک ویل میں ہے اور اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے، تو جس شیلٹر میں جائے گا وہاں پہ اس کو حلال فوڈ نہیں ملے گی، اس کو جو دوست ملیں گے وہ اس کو اور نیچے سے نیچے سے نیچے سے نیچے لے کے چلتے چلے جائیں گے. تو کمیونٹی میں بجائے اس کے کہ ہر بندہ یہ کہے کہ جی میں ممبر آف پارلیمنٹ بن کے ہی چینج لے کے آ سکتا ہوں، اس چینج کی ضرورت ہے کہ کمیونٹی کے بیچ میں گیٹ ٹوگیدر، وی ہیو ٹو ہیو سم کمیونٹی سینٹرز، وی ہیو ٹو ہیو سم شیلٹرز، کہ خدا نخواستہ اگر کسی مسلم بچے کی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں تو وہ اس سائڈ کے اوپر اس کو لے کے جایا سکے. بہرحال میرا شاید خواب دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے، بٹ دس از واٹ آئی تھنک. بٹ اینی ویز 7:48 کے اوپر آج 7:49 آج مغرب کی اذان ہے، 7:49 پہ انشاءاللہ آج مغرب کی اذان ہم آپ کے ساتھ پیش شیئر کر سکیں گے. بہرحال یہاں پہ اچھا ایک انفارمیشن بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. کتنے بڑے اعظم ہیں؟ ٹھیک ہے، کتنے کانٹیننٹس ہیں؟ پانچ. وہ آپ امریکہ کا ایک ساؤتھ امریکہ کا، ایک نارتھ امریکہ کا ہے، اس کا ساؤتھ اور نارتھ کو نکال دیجئے گا. پانچ میں سے چار بر اعظم اے سے شروع ہوتے ہیں، اور جتنے بر اعظم ہیں وہ جس لفظ پہ شروع ہوتے ہیں اسی لفظ پہ ختم ہوتے ہیں. ڈیڈ یو ایور نوٹس؟
نو، آئی نیور نوٹس اٹ.
بر اعظم امریکہ، اٹ سٹارٹس ود اے، اٹ اینڈز ود اے. ساؤتھ اینڈ نارتھ کو آپ نکال دیں، افریقہ سٹارٹس ود اے، اینڈز ود اے. یورپ کی طرف آپ آ جائیں، یورپ ای سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ای کے اوپر ہی ختم ہو جاتا ہے. ایشیا اے سے سٹارٹ ہوتا ہے، اے پہ ہی ختم ہو جاتا ہے. آسٹریلیا اے سے سٹارٹ ہوتا ہے، اے پہ. سو
عبداللہ،
آج یو آر، وائی یو آر ریوالوونگ اراؤنڈ یور سیلف ٹوڈے؟
عبداللہ اے سے شروع ہوتا ہے، اے پہ ختم ہوتا ہے.
الحمدللہ. تو پانچ میں سے، پانچ میں سے جو چار بر اعظم ہیں دے سٹارٹ ود اے، اینڈ ایوری بر اعظم جس جگہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اسی الفابیٹ کے اوپر آ کے ختم ہوتا ہے. ایک اور چیز بڑی آپ کے ساتھ امپورٹنٹ شیئر، بڑی پیاری، ٹائپ رائٹر. جب ہم ٹائپنگ کرتے ہیں نا تو صرف ایک ورڈ ہے، جس ون ورڈ جو کہ کی بورڈ کی اوپر کی لائن سے لکھا جاتا ہے، واٹ از دیٹ؟ ٹائپ رائٹر. آل دا الفابیٹس ان ٹائپ رائٹر از آن دا اپر جو لائن ہے کی بورڈ کی، اس کے بیچ پہ ہے. کیسا ہے؟ اچھا ایک اور چیز میں بڑی پیاری مجھے جو پتا چلی وہ تھی کہ کی بورڈ پر صرف بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے ٹائپ ہونے والا سب سے بڑا جو بامعنی لفظ ہے وہ ہے سٹیورڈنیس. یعنی آپ جب کی بورڈ، کچھ الفاظ جب ہم لکھتے ہیں نا، ہاتھ رکھتے ہیں نا، تو ہم انگوٹھوں کو ایچ ایچ اینڈ جی کے اوپر رکھتے ہیں، اور اے ایس ڈی ایف انگلیوں کو ہم، یعنی جو الفابیٹک ٹائپنگ کے جو رولز ہیں، جو ٹائپ رائٹر کے جو رولز ہیں، ان کے مطابق. اور بہت سے لوگ دیکھے بغیر جب ٹائپ کرتے ہیں تو بنیادی طور پر ایچ اور جی کے اوپر تھوڑا سا بمپ ہوتا ہے، جو کہ واپس ہمیں اپنی انگلیوں کو واپس اس جگہ پہ لے کے آنے میں، یہ جو انگوٹھے ہیں ان کو ہم اسپیس بار کے اوپر رکھتے ہیں، اور یہ انگلی ہم اپنے ایچ کے اوپر رکھتے ہیں اور یہ انگلی جی پہ رکھتے ہیں. ایچ اور جی کے اوپر تھوڑا سا بمپ ہوتا ہے. اور جب آپ ٹائپ کریں تو لیفٹ ہینڈ سے اگر آپ پورا کا پورا ایک لفظ جو ٹائپ کرنا، بہت سے لفظ لکھنے کے لیے سیڈ، تو ایس اے آئی مجھے اوپر جا کے پریس کرنا پڑتا ہے اور ڈی پھر مجھے یہاں آ کے پریس کرنا پڑتا ہے، مگر ایک ہی ہاتھ سے جو ٹائپ ہونے والا لفظ ہے وہ سٹیورڈنیس ہے. اور میں آئی تھاٹ اٹ مائٹ انٹرسٹ یو ہے نا. اور میں نے کیا بتانا تھا, اور میں نے کچھ نہیں بتانا تھا. ہاں اوکے اوکے کیسے بنا تھا ڈو یو نو, اوکے اوکے کا وجود کیسے آیا تھا؟ بہت سی چیزیں ایکسیڈینٹل وجود میں آئی تھی. ڈو یو نو کیسے اوکے وجود میں آیا تھا؟
I have no clue whatsoever.
وہ نا امریکہ کے ایک پریزیڈنٹ تھے, ان کا نام تھا اینڈریو جیکسن. اینڈریو جیکسن ان کا نام تھا. تو انہوں نے وہ جب لکھ رہے تھے نا اپنا, تو انہوں نے ایک لفظ لکھنا تھا آل کریکٹ, اے ڈبل ایل سی او ڈبل آر ای سی ٹی. تو انہوں نے آل کریکٹ کو لکھنے کے بجائے آل او ڈبل ایل اور کے کریکٹ سی کی بجائے کریکٹ کو کے سے لکھنا لکھا. پھر ان کی غلطی نکل آئی تو انہوں نے اس کو ایبریویشن بنا دیا
اوکے
آل کریکٹ. یہ اینڈریو جیکسن تھے پریزیڈنٹ. اینی ویز یہ تو تھوڑی سی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. چلیے میں ایک پوئم کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتی ہوں اور اس کے بعد
ٹائم ہو گیا ہمارا.
میں آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کیا کرتی ہوں, دیکھیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں, آپ نے میرے مظفر کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے. اور میں آپ کو یقین دلواتی ہوں کہ اللہ کا وعدہ بالکل پکا وعدہ ہے کہ کہتے ہیں واٹ ایور گوز اراؤنڈ دیٹ کمز اراؤنڈ. ہم سے بڑے کتنے ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ ہمیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں. اینڈ وی آلسو ہیو ٹو گو ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے ان شاء اللہ. اگر ہم کسی دوسرے کو جس سے ہماری غرض غایت اور رشتہ بھی نہیں ہے, اگر آپ اس کو اچھے لفظوں میں یاد رکھیں گے, نہ صرف مظفر نہیں وہ تمام لوگ جا جس دنیا میں نہیں, اللہ تعالیٰ ان کی منزلوں کو آسان فرمائے, آمین ثم آمین. تو مجھے یقین ہے کہ ہمیں بھی کوئی ضرور یاد رکھے گا ان شاء اللہ. وہ پوئم ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. وہ کہتے ہیں ہے شوق سفر ایسا, ایک عمر سے ہم نے منزل بھی نہیں پائی, رستہ بھی نہیں بدلا, موسم بھی نہیں بدلا, منظر بھی نہیں بدلا. ہے شوق سفر ایسا, ایک عمر سے ہم نے منزل بھی نہیں پائی, رستہ بھی نہیں بدلا, موسم بھی نہیں بدلا, منظر بھی نہیں بدلا. اس شہر کو جانے کا رستہ بھی نہیں بدلا, کشتی بھی نہیں بدلی, دریا بھی نہیں بدلا, ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا. تم چھوڑ گئے جیسے, سب ویسے ہی رکھا ہے. تم کچھ تو نبھا دیتے, آخر کو محبت تھی, ہم نے تو عقیدت میں لہجہ بھی نہیں بدلا. ہے شوق سفر ایسا, ایک عمر سے ہم نے منزل بھی نہیں پائی, راستہ بھی نہیں بدلا. اس پوم کے ساتھ اجازت چاہوں گی آپ سے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اور بس اب 8 بجے تک ہم آپ کا سر کھایا کریں گے. رمضان کی آمد آمد ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب کرے یہ روزے اور ان کا حق ادا کرنے کی اور صحیح عبادات کا حوصلہ اور توفیق دے. جی ماجد بھائی,
بس اب 47 ہو گیا, ہاں تو ہم لے چلتے ہیں اپنے ریگولر پروگرامنگ کی طرف. ٹل ٹمارو, اللہ حافظ.
رحمت سمندر جو بے قرار ہو, دونوں جہاں پر جو مہرباں ہو, اللہ پر تو ہے وہ بھی ظاہر, میرا عمل جو سب سے نہاں ہو. سورج ہے وہ میں ہوں ایک ذرہ, عظمت نبی کی کیسے بیان ہو. لکھوں ثنا میں الفاظ ویسے, جن پر ستاروں جیسا گماں ہو. کیسے نبی کی بیان ہو عظمت, کیسے نبی کی بیان ہو, کیسے نبی کی بیان ہو عظمت, کیسے نبی کی بیان ہو, کیسے نبی کی بیان ہو عظمت, کیسے نبی کی بیان ہو.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। रेडियो 770 AM वॉइस ऑफ कम्युनिटी, फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
सामी करम, टोरंटो गिरदुनवा के इलाकों में अब टाइम हो जाता है मगरिब की नमाज का, तो आइए सुनते हैं मगरिब की अजान।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
Mangta hu, ata mangta hu, ilahi main tujhse dua mangta hu, ata kar tu shaane کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے عطا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس صحت عطا کر جو مفلس ہے
مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، بلا سے ہم کو صدا دور رکھنا، الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، بلا سے ہم کو صدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی تجھے واسطہ پنج دن کا ہوشا دلوں کے چمن کا، الہی تجھے واسطہ پنج دن کا ہوشانا بغنچا دلوں کے چمن کا، یہ دامن ہمارا مرادوں سے بھر دے، یہ دامن ہمارا مرادوں سے بھر دے، میں سب کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں۔
یو آر لسننگ ٹو ڈبلیو ٹی او آر 770 AM یانگسٹاؤن ٹورانٹو۔
WTOR Youngstown, Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
Thank you.